क्या कहा तुमने? आहान ने जल्दी ही अंश को अपनी गोद में थाम लिया और उसके साथ मस्ती करने लगा था। अब ये देखकर तो अरमान के चेहरे पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साम झलक रही थी। अब आगे अरमान एकदम कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि ये लोग किस तरह से एक मामूली से केयरटेकर के बच्चे को इतने प्यार से खिला रहे हैं। फिर अचानक एक बात अरमान के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। उसने आहान की ओर देखकर एकदम से पूछा, क्या कहा तुमने चाचू? तू पागल हो गया है क्या? एक मामूली से केयरटेकर के बच्चे के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहा है? अगर तू इस तरह से इन मामूली लोगों से रिश्ता जोड़ेगा तो कल को ये तेरे सर पर सवार होकर बैठ जाएंगे और इस घर से जाने का नाम नहीं लेंगे, समझा तू? और वैसे भी इन छोटे लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है अमीर लोगों के घर में अपने पैर पसारने का, और अब ये लोग इस बच्चे को हथियार बनाकर इस तरह से तुम सबके इमोशन साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जैसे ही अरमान ने तंज भरे अंदाज में आहान को ये बोला, तो ये सुनते आस्था के साथ चारों लड़कियों को भी अब काफी तेज गुस्सा आ गया था और अब चारों ही बेचैनी से आस्था को देखने लगती हैं। अरमान के ये शब्द आस्था का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। आस्था आग बबूला हो उठी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जाकर अरमान को अच्छी हांसी सुना दे, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से आहान अरमान के सामने आया और बात संभालते हुए अरमान से बोला, अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ना ये कितना क्यूट और प्यारा सा बच्चा है, इसको देखकर तो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन ही दूर हो जाती है। वहीं रश्मि, राधिका, वंशिका और रौनक अचानक एक दूसरे को चुपके से देखने लगी। फिर कुछ प्लानिंग करके चारों ने आपस में एक दूसरे को आंख मार दी और तुरंत ही राधिका, वंशिका और रौनक आगे आई और तंज भरे अंदाज में बोली, हाँ, हमारा अंश बहुत क्यूट और प्यारा बच्चा है, लेकिन पता नहीं इसके बाप की अकल कैसे मारी गई जो इतने प्यारे, सुंदर और क्यूट से बच्चे के साथ साथ इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर भाग गया। लगता है इसके बाप का जरूर कोई ना कोई स्क्रू ढीला हो गया था जो इतने प्यारे बच्चे के साथ साथ इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर चला गया। वहीं रौनक भी जल्दी से चुटकीले अंदाज में अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, हाँ मिस्टर सिंघानिया, मुझे तो ये भी लगता है इसका बाप ना एक नंबर का राक्षस होगा, एकदम पिशाच जैसा, जिसे बात करने की तमीज़ नहीं है। वहीं अब चारों लड़कियों की बातें सुनकर आस्था अगले ही पल हल्का सा मुस्कुरा उठी थी। मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपनी मुस्कान दबाते हुए हल्के गुस्से में बोली, अरे ये क्या कह रही हो तुम लोग? देखिए, हम अपने पति के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं सुन सकते, और अपने पति को राक्षस, पिशाच और डेविल कहने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है, समझी तुम सब? जैसे ही आस्था ने ये कहा तो अरमान की बातें सुनकर थोड़ी देर पहले जो सारी लड़कियां गुस्से से तिलमिला रही थी, अब आस्था की बात सुनकर वो सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहीं अरमान तो पूरी तरह से बुद्ध बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो उन सबकी की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं आकाश, सुमित भी दबे मुंह हंस देते हैं। ध्रुव और आहान भी एक दूसरे की ओर आंख मार देते हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों सोच रहे थे कि ये लड़कियां तो उनसे भी ज्यादा चालाक और शातिर निकली, अरमान भाई के मुंह पर उन्हीं की जमकर बुराइयां कर रही हैं। वहीं अभिमान भी उन सबकी शरारत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। लेकिन तभी अरमान को कुछ अजीब सा लगने लगा था। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि ये सारी बातें उसी के लिए कही जा रही हैं। लेकिन ये सोचकर कि उसका आस्था और अंश से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपना सर झटका। फिर उन सबकी ओर देखते हुए बोला, तुम सबको याद है ना तुम लोगों को क्या करना है? तो ये सुनते ही आकाश, सुमित और आहान, ध्रुव ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया था। फिर अरमान ने जल्दी ही थोड़ी तेज आवाज में टाइगर का नाम पुकारा। टाइगर, जो कि मारिया के साथ था, वो अरमान की गंभीर आवाज सुनने के बाद तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया और जल्दी ही अरमान का इशारा पाकर वो अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल देता है और फिर उसके साथ कार में बैठकर रवाना हो जाता है। वहीं अरमान के वहां से जाने के बाद एक बार फिर सबके सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं सुमित और आकाश तपाक से बोले, अरे माँ, लड़कियों, तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है जो तुम सब इस तरह से जख्मी शेर के साथ छेड़खानी कर रहे हो। उनकी बात सुनते ही रौनक तुरंत ही नटखट अंदाज में बोली, सुमित भैया, आकाश भैया, कुछ भी कहो, अरमान भाई का कंफ्यूज चेहरा देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। अब देखना मैं उनसे किस तरह से गिन गिन कर बदला लेती हूँ। कितना परेशान किया है ना उन्होंने हमें, अब तो हमारा अंश भी आ गया है, अब देखना मैं उन्हें कितना परेशान करती हूँ। रौनक की चुलबुली बातें सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी आस्था थोड़ा सा सीरियस अंदाज में बोली, आकाश भैया, सुमित भैया, कम से कम आप ये तो बताइए, आखिरकार स्टडी रूम में बुलाकर उन्होंने आपको क्या काम करने के लिए बोला है? ये सुनके वो चारों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। फिर अगले ही पल वो चारों ही एकदम से हंस दिए। अब उनको इस तरह से हंसते हुए देखकर सभी लड़कियां कंफ्यूज होकर उनकी ओर एकटक देखने लगती हैं। तभी आहान ने हल्की सी हंसी दबाई और छट से बोला, उफ़ो भाभी, ये लोग सही से नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिकर मॉट, मैं हूं ना आपका क्यूट देवर, अब देखिए, मैं आपको अरमान भाई की पूरी बात बताता हूँ कि उन्होंने हमें स्टडी रूम में बुलाकर क्या कहा। जैसे हम चारों स्टडी रूम में पहुंचे तो हमें लगा कि भाई को कोई इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना होगा, या तो उस वायरस के बारे में जो उन्हें इंजेक्ट किया गया था उसके बारे में पूछताछ करना होगा, या फिर कुछ और कहेंगे। लेकिन जैसे हम वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि आप उन्हें बहुत ज्यादा जहर लगती हैं, वो आपको इस घर में देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आपके पति को ढूंढें और उनके साथ आपको यहाँ से रफा दफा कर दें। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने मिलकर सारी सिचुएशन समझाई तो ये सुनते ही सभी लड़कियां हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। लेकिन आस्था के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई थी कि उसका पति जाने अनजाने में सही, लेकिन उसे खुद से दूर करना चाहता है। फिलहाल बात को टालने का दिखावा करते हुए वो भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो उठी थी। तभी नानी माँ आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाते हुए प्यार से बोली, शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। शायद तुम भूल रही हो, कल हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कान्हा जी कोई ना कोई करिश्मा जरूर दिखाएंगे और दामाद जी के साथ हुए धोखे का जरूर कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लगेगा। नानी माँ की ये उम्मीद आस्था को आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। आस्था और बाकी सब में हिम्मत दुगनी हो गई थी। अब सिचुएशन तुरंत ही बदल गई और तब आहान फंक्शन के बारे में सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोला, अच्छा नानी माँ, अगर कल फंक्शन है तो क्या कल भी घर में कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे? आहान की बात सुनकर नानी माँ ने हानि भरी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ बिटवा, हम ढेर सारी अलग अलग तरह की मिठाई बनाएंगे और अपने बाल गोपाल को भोग लगाएंगे। अब नानी माँ की इस तरह की बातें सुनकर सभी के सभी श्रद्धामय से हो गए थे, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में कभी कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब से आस्था उस घर में आई थी तब से छोटे छोटे फंक्शन वहाँ मनाए जाने लगे थे।
लेकिन तभी ध्रुव आश्चर्य से नानी को देखकर एकदम से बोला, लेकिन नानी माँ, अरमान भैया को तो किसी भी तरह का कोई फंक्शन मनाना पसंद ही नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो वो आग बबूला हो जाएंगे और कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा कर देंगे। भले ही मैंने एंटीडोट बनाने के नाम पर वंशिका और आप सबको यहाँ पर रोक लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरमान भाई फंक्शन मनाने के मामले में आप लोगों से सहमत होंगे। ध्रुव की बातों पर गौर करते ही अब सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि आस्था तो पूरा घर सजाना चाहती थी और इतना ही नहीं, अपने कान्हा जी के लिए वो अपने हाथों से नए वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाना चाहती थी और अच्छी तरह से पूरे जन्माष्टमी का प्रहार मनाना चाहती थी। लेकिन अब इस तरह की बातें सुनकर वो भी मायूस हो गई। और तभी अचानक आस्था का फोन बज उठा। फोन बजने पर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई अविनाश का था। और जब से आस्था इंडिया आई थी तब से उसने ना तो अविनाश, ना ही एंजल और ना ही अपने दादाजी से कोई बातें की थीं, क्योंकि यहाँ आकर तो उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। तो अब फोन आने पर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने घर वालों को फोन नहीं कर पाई थी। फिलहाल अब जल्दी से आस्था ने फोन अपने कानों पर लगा लिया था। तब दूसरी ओर से अविनाश की गहरी आवाज उसके कानों में सुनाई दी, गोरी बेटा, तुम जब से वहां गई हो तब से तुमसे कोई बात ही नहीं हुई। पता है तुम्हें दादाजी कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे? तभी उसे अविनाश के पीछे से एंजल की आवाज सुनाई दी, हाँ मैं भूलने की इतनी भी क्या जल्दी है, अब जब तुम वहां अच्छी तरह से पहुंच ही गई हो तो कम से कम हमें एक फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। अच्छा ये बताओ, तुम सबके लिए जो गिफ्ट लेकर यहाँ से गई थी, तुमने उन्हें वो गिफ्ट्स दिए या नहीं? सबको तुम्हारे गिफ्ट्स पसंद तो आए ना? एंजल की आवाज़ पीछे से आ रही थी, शायद अविनाश ने फोन स्पीकर पर रखा था। आस्था ने जब अपने भाई की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो उठीं। अपने घर वालों की आवाज़ सुनकर उसका दिल इमोशन से भर आया और वो उस वक्त फूट फूट कर रोना चाहती थी। उसका दिल ये भी कह रहा था कि वो सबको सारी बातें बता दे कि किस तरह से उसका पति पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल अपने उमड़ते हुए जज्बातों को दबाने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। आस्था की आवाज़ में मायूसी फील करते हुए अविनाश की आवाज़ गंभीर हो गई और उसने आस्था से पूछा, क्या बात है गोरी, अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ ना। तब आस्था ने गहरी सांस ली और अपनी बेचैनी छिपाते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं है, वो आपकी आवाज़ सुनकर हम थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वैसे हम आपको बताना ही भूल गए, यहाँ पर त्योहार था ना, और फिर हमें सबको राखी भी बांधनी थी, इसलिए हम सबसे बातें करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हम भूल ही गए कि हमने आपको फोन ही नहीं किया। आस्था की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। ये महसूस करते ही कहीं ना कहीं अविनाश और एंजल ने राहत की सांस ली थी। फिर भी आस्था उनसे ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने आह भरी और बात को हंसी में टालते हुए जल्दी से बोली, भैया हम आपको ना थोड़ी देर में फ्री होकर कॉल करते हैं, ठीक है? इतना बोलकर उसने बिना अविनाश की बात सुने जल्दीबाजी में फोन काट दिया था, क्योंकि अगर वो ज्यादा बातें करती तो शायद अविनाश उसकी आवाज़ में उदासी से भाप लेता और फिर इस बात का पता लगा लेता कि जरूर उसकी बहन किसी न किसी मुसीबत में है, तो इसलिए उसने बहाने से फोन काट दिया था। फिर आस्था नानी माँ की ओर देखकर हल्की स्माइल करते हुए बोली, नानी माँ हम आपको एक बात बताना ही भूल गए, सामने वाला जो मेंशन है ना, जो सिंघानिया मेंशन के जैसा ही बड़ा और आलिशान है, वही मेंशन अविनाश भैया ने खरीद लिया है और वो मेंशन उन्होंने हमें राखी के दिन गिफ्ट किया है। इतना सुनते ही सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई। वहीं सभी लड़कियां एक्साइटेड होते हुए तुरंत बोल पड़ी,
ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब हमारी सारी प्रॉब्लम भी दूर जाएगी। नानी माँ, हम सोच रहे थे ना कि हम जन्माष्टमी का त्यौहार कहाँ मनाएंगे, अब हम जन्माष्टमी का फंक्शन आस्था के नए घर में मनाएंगे। सिंपल, कुछ सोचकर आस्था थोड़ा मायूस होकर दबी हुई आवाज में बोली। लेकिन हमें अपने पति के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही है नानी माँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। आप जानती हैं इस जन्माष्टमी के लिए हमने क्या क्या प्लान सोचा था?